ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸದಾ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ನಜರೋ ಮೇ ಸಮಯ ರಹನೆ ವಾಲೆ ಯಜ್ಞ ಕೆ ಪಿಲರ್ಸ್ ಆದರಣೀಯ ಯಜ್ಞ ಕೆ ವರಿಷ್ಠ ಭ್ರಾತಾ ರಮೇಶ್ ಭಾಯಿ ಜೀ ಹಮ್ ಸಭಿ ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಉಪಸ್ಥಿತ ಹೈ. ಭ್ರಾತಾ ಜೀ ಆಪ್ಕಾ ಇಸ್ ಸಭಾ ಮೇ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಸಭಿ ಕಿ ಓರ್ ಸೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೈ, ಸ್ವಾಗತ ಹೈ, ಸ್ವಾಗತ ಹೈ. ಆದರಣೀಯ ಭ್ರಾತಾ ಜೀ, ಆಪ್ಕೆ ಲೌಕಿಕ ಘರ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಪ್ಯಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬಾಬಾ ಔರ್ ಮಮ್ಮಾ ಯೇ ದೋನೋ ಆಪ್ಕೆ ಲೌಕಿಕ ಘರ್ ಮೇ ರಹೆ ಹೈ. ಯೇ ಪರಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಆಪ್ಕೋ ಹೀ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೈ. ಸಾರೆ ಕಲ್ಪ ಮೇ ನ ಕಿಸಿಕೋ ಯೇ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹುವಾ ಹೈ, ನ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ವೋ ಭಾಗ್ಯ ಆಪ್ಕಾ ರಹಾ ಹುವಾ ಹೈ. ಸಾಥ್ ಹೀ ಸಾಥ್ ಮೇ ಮಮ್ಮಾ ಔರ್ ಬಾಬಾ ಕೆ ಅಂಗ ಸಂಗ ಆಪ್ ಸ್ವಯಂ ರಹೆ ಹುವೆ ಹೈ. ಆಪ್ಕೆ ಪಾಸ್ ದಿವ್ಯ ಔರ್ ಅಲೌಕಿಕ ಅನುಭವ ಹೈ, ಜೊ ಆಪ್ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಾವೋ ಕೋ ಉಸ್ಕಾ ಅನುಭವ ಕರಾತೆ ರಹತೆ ಹೈ. ದಾದಿಯೋ ಕೆ ಆಪ್ ಅತಿ ಸಮೀಪ ಹೈ, ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ವಫಾದಾರ್ ಔರ್ ಯಜ್ಞ ಕೆ ಆಪ್ ರಕ್ಷಕ ಹೈ. ಸಾಥ್ ಹೀ ಸಾಥ್ ಮೇ ಜಬ್ 1972 ಮೇ ವಿದೇಶ ಸೇವಾ ಪರ್ ಪಹಲಾ ಡೆಲಿಗೇಶನ್ ಗಯಾ, ಜಿಸ್ಮೇ ಆಪ್ ಸ್ವಯಂ ಭೀ ಉಸ್ ಸೇವಾ ಮೇ ಗಯೆ ಹುವೆ ಥೆ, ಯೇ ಭೀ ಆಪ್ಕಾ ಏಕ್ ಪರಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ರಹಾ ಹುವಾ ಹೈ. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಕೆ ಆಪ್ ಜನರಲ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಭೀ ಹೈ. ಸಾಥ್ ಮೇ ಆಪ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿನ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಸ್ಕೆ ಎಂಡಿ ಹೈ. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕೆ ಆಪ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಭೀ ಹೈ. ರಾಜಯುಗಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೆ ಆಪ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೈ. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ವಿಂಗ್ ಔರ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ಕೆ ಆಪ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಹೈ. ಔರ್ ಆಪ್ ಸಭಿ ದೇಖತೆ ಹೋಂಗೆ, ಗಯೆ ಭೀ ಹೋಂಗೆ ಮನಮೋಹಿನಿ ವನ್ ಮೇ ಜೊ ಗಾಡ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬನಾ ಹೈ. ಉಸ್ ಗಾಡ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕೆ ಆದರಣೀಯ ಭ್ರಾತಾ ರಮೇಶ್ ಭಾಯಿ ಜೀ ಔರ್ ಉಷಾ ಬೆನ್ ಜೀ ಉಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆ ಟೋಟಲ್ ನಿರ್ಮಾತಾ ಔರ್ ಪ್ರಣೇತಾ ಆಪ್ ಸ್ವಯಂ ಹೈ. ಔರ್ ಹಮ್ ಸಭಿ ಜೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೇ ಬಾಬಾ ಕೋ ಯಾದ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ವೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೆ ಭೀ ಆಪ್ ಸ್ವಯಂ ಹೀ ಭ್ರಾತಾ ಜೀ ಪ್ರಣೇತಾ ರಹೆ ಹೈ. ಜಿಸ್ಕಾ ಯೋಗದಾನ ಔರ್ ಜಿಸ್ಕಿ ದುಆಯೆ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಾವೋ ಕೆ ಆಪ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೈ. ಆಪ್ ನೇಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಉಸ್ಮೇ ಭೀ ಆಪ್ಕಾ ಸದಾ ಯೋಗದಾನ ರಹತಾ ಹೈ. ಸಾಥ್ ಹೀ ಸಾಥ್ ಮೇ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಕೆ ಅಂದರ್ ಆಪ್ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಜಾತೆ ರಹತೆ ಹೈ, ಬಾಬಾ ಕಾ ಸಂದೇಶ ಪಹುಂಚಾತೆ ಹೈ, ಉನ್ಕಿ ದುಆಯೆ ಭೀ ಆಪ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೈ. ಔರ್ ಐಸೆ ಬಾಬಾ ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯ ರತನ್ ಇತನೆ ವ್ಯಸ್ತ ಹೋತೆ ಹುವೆ ಭೀ ಹರ್ ಮಾಸ ಜೋ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ಆತಾ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ ಜೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹಮ್ ಸಭಿ ಪಡ್ತೆ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ ಭೀ ಭಾಯಿ ಸಾಹಬ್ ಕಾ ಯೋಗದಾನ ಹೈ. ತೋ ಐಸೆ ಯಜ್ಞ ಕೆ ವರಿಷ್ಠ ಸದಾ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ನಜರೋ ಮೇ ರಹನೆ ವಾಲೆ ಆದರಣೀಯ ಭ್ರಾತಾ ಜೀ ಕೆ ಸ್ವಮುಖ ಸೆ ಹಮ್ ಆಜ್ ಬೇಫಿಕರ್ ಬಾದಶಾ ಕೈಸೆ ಬನ್ಕರ್ ಕೆ ರಹನಾ ಹೈ. ಕಲ್ ಅವ್ಯಕ್ ಬಾಪ ದಾದಾ ಕಿ ಜೋ ಮುರ್ಲಿ ಚಲಿ ಉಸ್ ಪರ್ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಛಿ ರೀತಿ ಸೆ ಬಡಿ ಗಹರಾಯಿ ಸೆ ಭಾಯಿ ಸಾಹಬ್ ಹಮ್ ಸಬ್ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕರೆಂಗೆ. ಅವ್ಯಕ್ ಬಾಪ ದಾದಾ ಸೆ ಆಪ್ಕೋ ಯೇ ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಕಾ ವರದಾನ ಮಿಲಾ ಹುವಾ ಹೈ, ಯೇ ಭೀ ಆಪ್ಕಾ ಏಕ್ ಪರಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹೈ. ಆದರಣೀಯ ಭ್ರಾತಾ ರಮೇಶ್ ಭಾಯಿ ಜೀ,
ಮೈ ಹಮೇಶಾ ಈ ಬಹನೋ ಕೋ ಕಹತಾ ಹೂಂ, ಬಾಕಿ ಸಬ್ ಪರಿಚಯ ದೇತೆ ಹೈ ವೋ ತೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೋತಾ ಹೈ, ಮೂಲ ಪರಿಚಯ ತೋ ಯಹಿ ಹೈ ಕಿ ಹಮ್ ಸಬ್ ಆತ್ಮ ಹೈ ಔರ್ ಏಕ್ ಪಿತಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಕಿ ಸಂತಾನ ಹೈ, ವೋ ಹೀ ಹಮಾರಾ ಆದಿ ಅವಿನಾಶಿ ಪರಿಚಯ ಹೈ. ಜೋ ಆಪ್ ಹಮ್ ಸಬ್ ಕಾ ಪರಿಚಯ ಯಹಿ ಹೈ, ಬಾಕಿ ಯೇ ತೋ ಸಾರಿ ಜಿಮ್ಮೇದಾರಿಯಾಂ ಜೋ ಮಿಲಿ ಹುಯಿ ಹೈ ಉಸ್ ಜಿಮ್ಮೇದಾರಿಯೋ ಕೋ ನಿಭಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕಾರೋಬಾರ್ ಕರ್ನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ, ವೋ ಕರ್ತಾ ಹೀ ರಹತೆ ಹೈ. ಕಲ್ ಕೆ ಭೀ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮುರಲಿ ಜೋ ಥಿ ಉಸ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಉಸ್ಕಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಕರ್ ಕರ್ಕೆ ಔರ್ ಉಸ್ಕೋ ಜೈಸೆ ಗಾಯ ಹೋತಿ ಹೈ गाय घास खा लेती है, उसके बाद एकांत में बैठ करके उसको उगारती रहती है। उस प्रकार से हम बच्चों को भी कल की मुरली जो सुनी उसके आधार पर आगे क्या कारोबार करना चाहिए उसके बारे में है। मैं हमेशा ही टाइमिंग नोट करता रहता हूँ घड़ी के साथ, मेरी घड़ी के हिसाब से। मैंने देखा मैं 11 बजे यहाँ आया, यहाँ करीब 3-4 मिनट घड़ी ये पीछे थी, तो इस प्रकार से मेरी घड़ी के हिसाब से कल दादी जी सभा में 8:25 को आए, 7:25 को आए और संदल पर बैठे और योग का गीत बजा, 7:27 को योग का गीत बजा। टाइमिंग इसलिए बताता हूँ कि इससे आपको समझ में आता है, समझ में आएगा कि कितना फास्ट कल कारोबार हुआ। 7:27 को संदल पर बैठे और 4 मिनट के अंदर 7:31 के अंदर ही दादाजी जी जो है वो बाबा के पास वतन में पहुंच गई। बाबा भी कितना फास्ट आए हुए, 7:33 को बाबा भी आ गए 2 मिनट में ही। और योग का जो है कारोबार जो है, दृष्टि देने का कारोबार लंबा चला। हमारा रवि भाई जो है वो इतना तैयार नहीं थे, वो वहां बैठे हुए थे, उसको मालूम नहीं था कि बाबा ने दृष्टि भी देना बंद कर दिया और इसलिए दृष्टि देने का कारोबार लंबा चला। और फिर बाबा ने 7:42 को मुरली शुरू की और गुजरात जोन का टर्न है, इस प्रकार की बाबा ने बात कही। मतलब तब तक जब तक मुरली का ऑपरेटिव पार्ट जो था वो 8:24 को था, तो आप गिनती कर सकते हैं पहले की 18 मिनट और बाद की 24 मिनट, 24 और 8 32 42 42 मिनट के अंदर बाबा ने मेन मुरली समाप्त की। फिर गुजरात जोन का टर्न की बात आई, फिर दो विंग्स की बात आई। मुन्नी बन ने बताया कि दो विंग्स आई हुई है, तो 8:32 को दोनों विंग्स के बारे में बाबा ने बताया। फिर डबल विदेशी को के बारे में बाबा ने बताया 8:44 को, और फिर 8:46 को बाबा ने स्टेज का कारोबार पूरा किया। फिर सबको स्टेज पर आना हुआ और फिर आप जानते हैं बाबा का भोग स्वीकार कराया आदि आदि जो बातें हुई। और उसके बाद बाबा ने 9:20 को हम बच्चों से विदाई लेकर के अपने धाम परम धाम वापस चले गए। इस प्रकार से ये घड़ी का टाइम इसलिए मैंने बताया कि कल कितना फास्ट हुआ। नॉर्मली गुलजार दादी को भी ध्यान में जाने में 6-7 मिनट लगती है। मैंने एक बार गुलजार दादी को हंसी हंसी में कहा था कि दादी आपसे भी हमारे क्लास के अंदर ऐसे महारथी भाई है जो जेट स्पीड से योग में ध्यान में चले जाते हैं। क्लास के बाद समाप्ति के बाद आप जानते हैं मुरली पूरी होने के बाद 3 मिनट का गीत बजता है, आप सबके सेंटर में होता ही होगा। और 3 मिनट के गीत के अंदर भी कई हमारे बहन भाई होते हैं, वो सूक्ष्म वतन में या परमधाम पहुंच जाते हैं। और आपको मालूम होगा ना वो परमधाम पहुंचा या नहीं पहुंचा उसका निशानी होती है, शरीर जो है ऐसा ऐसा हिलता है। तो मैंने गुलजार दादी को कहा कि आपसे तो हमारे कई भाई बहन तीखे हैं जो 3 मिनट के गीत के अंदर ही बाबा के पास पहुंच जाते हैं। तो दादी कहे मैं क्या कर सकती, बाबा मुझे बुलाएंगे तब आए, मैं जाऊंगी ना। मैंने कहा हमारे भाई ऐसे हैं जिनको बाबा बुलाते नहीं है, भाई बहन ऐसे हैं बाबा बुलाते नहीं है फिर भी वो पहुंच जाते हैं, तो आप बताओ कौन अच्छे हैं। बहुत ही कई भाई बहन जो है ना क्लास के अंदर झुटका खाते हैं, बहुत बहुत लोग खाते हैं। और इसमें इसके कारण क्या होता है, जो क्लास कराने वाले होते हैं ना उनको भी डिस्टर्बेंस होती है। कल की मुरली के बारे में हम शुरू करें उसके पहले मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पिछली मुरली में भी बाबा ने वो कहा था, मैंने कहा शायद ये पासिंग रेफरेंस होगा, तो कल बाबा ने वही बात फिर रिपीट किया। बाबा ने कहा ना विदेशियों के लिए डबल पुरुषारथी, इसलिए डबल पुरुषारथी की जो बात कही बाबा ने। और उसका फिर बाबा ने ट्रांसलेशन किया, डबल शब्द का, पिछली मुरली में भी बाबा ने डबल का ट्रांसलेशन कर करके तीव्र पुरुषार्थी कहा। ये ट्रांसलेशन की दुनिया के अंदर यह बहुत बड़ी बात है। ट्रांसलेशन के अंदर तीन शब्द आते हैं, शब्दांतर, भावांतर और भाषांतर। शब्दांतर, भावांतर और भाषांतर। शब्दांतर ऐसे होता है, हाथी, हाथी को अंग्रेजी में कहो एलिफेंट, वो शब्दांतर हो गया। परंतु और भी कई ऐसी बातें हैं जिसके अंदर जो सिंबॉलिक होती है, उस सिंबॉलिक बातों को समझाने के लिए भाषांतर या भावांतर सबसे अच्छे में अच्छा है भावांतर। आज देखिए, जिन्होंने श्राद्ध कर्म किया हुआ होगा उनको मालूम होगा कि पिंड दान देना पड़ता है। अज्ञान काल में भी किया होगा, जिनके रिश्तेदारों ने शरीर छोड़ा हुआ होगा तो उनको पिंड दान देना पड़ता है। पिंड दान जो है ना, आटे का गोल गोल बनता है। अभी उसका इंग्लिश शब्द ही नहीं है, तो इंग्लिश शब्द करने वाले क्या बोलते हैं, बॉल ऑफ राइस, बॉल ऑफ राइस, राइस के आटे का गोला बोल देता है। शब्दांतर में क्या होता है, भाषांतर में क्या होता है, रेलवे स्टेशन जो है उसको क्या बोलते हैं, रेलवे को क्या बोलते हैं मालूम है ना, लोह पथगामिनी। और फिर स्टेशन को क्या बोलते हैं, अग्नि रथ विराम स्थल। इस प्रकार से करते रहते हैं, इसके कारण क्या होता है कि भाषांतर जो है कभी कभी हस्ती का भी पाठ बन जाता है। हमारे यज्ञ में भी ऐसा होता है, कहीं हमारे भाई बहन जो है आप इंग्लिश ट्रांसलेशन सुनते रहो तो मालूम पड़ेगा, कहीं ऐसे हैं जो शब्दांतर के रूप में ही करते हैं। दो शब्द ऐसे हैं, एक है मधुबन, आप सबको मालूम है ना, आप पांडव भवन जाएंगे तो बाहर एंट्रेंस में लिखा हुआ है मधुबन। तो एक बाबा का एक बच्चा जो था उसने ट्रांसलेशन किया, कहा मधुबन का अर्थ क्या होता है, इंग्लिश में क्या समझावे, तो कहा वन, वन माना फॉरेस्ट और हनी, फॉरेस्ट ऑफ हनी इज इक्वल टू मधुबन। आप समझे मेरी बात को, वहां पांडव भवन में कोई फॉरेस्ट दिखाई पड़ता है आपको, कभी गए तो होंगे ना, यहाँ सभा में बैठे हुए कोई जो पांडव भवन नहीं गए हुए वो हाथ खड़ा करें। एक दो है ऐसे, एक माता ने हाथ खड़ा किया ऐसे, और भी होगा शायद। हाँ, जो वहां फॉरेस्ट तो है नहीं, ट्रांसलेशन तो करने वालों ने क्या कर दिया, फॉरेस्ट ऑफ हनी। ऐसे ही जब शांतिवन बना और शांतिवन का उद्घाटन हो रहा था, दादी जानकी बैठे, दादी प्रकाश मणि जी बैठे हुए थे, और जिसने ट्रांसलेशन किया उसने बता दिया शांति वन, वन माना फॉरेस्ट और शांति, मतलब क्या ट्रांसलेशन किया, फॉरेस्ट ऑफ पीस। आप बताओ ये ट्रांसलेशन यथार्थ है, फॉरेस्ट ऑफ पीस। यहाँ क्या है, राज्य बाजू में जंगल है क्या, फॉरेस्ट ऑफ पीस। फिर मेरा भाषण करने का टर्न आया था, मैंने कहा कि ये ट्रांसलेशन बराबर नहीं है, तो क्या होना चाहिए। दादी जानकी ने खास अटेंशन से सुना, तो कहा, मैंने कहा वन माना एक नंबर की भी बात होती है, वन का तो फॉरेस्ट भी होता है, तो वन माना पहला नंबर होता है, उसको कहते हैं नंबर वन, ऐसे ही कहते हैं ना। हाँ, तो नंबर वन मतलब एक नंबर, और एक नंबर की शांति की अनुभूति जहां होती है वो है शांतिवन। ये शांतिवन माना फॉरेस्ट ऑफ पीस नहीं है, हाँ, परंतु जहाँ एक नंबर की सर्वश्रेष्ठ शांति की अनुभूति हो सकती है, और करण करावनार बाबा यहाँ आकर के शांति की अनुभूति कराते हैं, और इसलिए इसका नाम शांति बने। तो दादी जानकी को ये बहुत पसंद आ गया, कहते हैं कि रमेश अभी तक तो हम फॉरेस्ट ऑफ पीस, फॉरेस्ट ऑफ पीस ही समझते थे, क्योंकि ट्रांसलेशन ऐसे ही होता था। मैंने दादी जी ने कहा कि आज हमने समझा कि बाबा ने शांति वन शब्द का अर्थ क्या है, नंबर वन, एक नंबर की शांति जहाँ उसकी अनुभूति होती है वो है शांतिवन। तो इस प्रकार से ये सब बातें इसलिए जरूरी है क्योंकि अपने ज्ञान के अंदर भाषा की अनेक प्रकार की विविधता है। हाँ, कभी आप जाएंगे ऊपर देखेंगे पांडव भवन में भी, जो ओम शांति भवन का हॉल है, वहां भी 21 भाषाओं में ट्रांसलेशन होता है, यहाँ पर भी यहाँ है, यहाँ है, अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन होता है। हम सभी भाषाओं को तो समझते नहीं है, परंतु जो भी ट्रांसलेशन करने वाले हैं, इन सब को हमारी एक रिक्वेस्ट है कि सिर्फ शब्दांतर न करें, भाषांतर भी नहीं करें, भावांतर करें। भाव क्या है, उस भाव को पकड़ करके भाव को एक्सप्रेस करने के लिए क्या होना चाहिए, इस प्रकार का ट्रांसलेशन होना चाहिए, सोचना इसके ऊपर। दूसरी एक बात, जो पिछले एक डेढ़ महीने से अव्यक्त मुरलियां जो रविवार को बॉम्बे में हम पढ़ते हैं उसमें आती है, जैसे पहले आई साक्षीपन की, साथीपन की, कल आई बेफिक्र बादशाह की। हमारे ज्ञान का दो पहलू है, एक परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा अभी दिव्य अवतरण लेते हैं, परमात्मा परमधाम निवासी है, हम सब आत्मा हैं, हम सबको परमधाम ले जा रहे हैं, परिवर्तन विश्व परिवर्तन करा रहे हैं, ये सारी बातें जो है, गीता का भगवान कौन है, इस प्रकार की जो थियरी की बात जो है, आध्यात्मिक क्षेत्र की थियरी की बातें जो है, जिसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो है थियरी की बातें, और वो बातें बाबा सिखाते हैं। और हमारी जो प्रदर्शनियां बनी हुई है, तो प्रदर्शनियों के जो चित्र बनाए हुए हैं हम लोगों ने ही बनाए हैं, उसमें से 90% चित्र ज्ञान का ये आध्यात्मिक पहलू जो है, फर्स्ट पहलू कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा नाम रूप से न्यारा नहीं है परंतु दिव्य अवतरण लेते हैं, आदि आदि जो भी बातें आप सब हम सब जानते हैं, वो पहलू एक पहलू ये है। दूसरा ज्ञान का एक दूसरा पहलू है, वो है बाबा, जिसको आप जानते हैं, ज्ञान में चार सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो जो दूसरा पहलू जो है वो ज्ञान का सीधा ही धारणा के साथ संबंध है, और इसके कारण क्या होता है कि बाबा इतनी सुंदर जीवन जीने की कलाएं सिखाते हैं, जीवन जीने के लिए ज्ञान की धारणाएं कराते हैं। ऐसी धारणा है दुनिया में और कोई संस्था में और कोई धर्म स्थापक या और कोई पंथ स्थापक या और कोई फिलोसोफर नहीं कराता है। जैसे रविशंकर जी है, श्री श्री रविशंकर कहते हैं उनको, वो भी जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लाइफ सिखाते हैं। मैंने उनका भी साहित्य पढ़ा है और बाबा का भी साहित्य पढ़ा हुआ है कि बाबा जीवन जीने की कला में क्या सिखाता है, और दुनिया के जो शिक्षक जो है, फिलोसोफर्स जो है, वो जीवन जीने की कला में क्या सिखाता है। बाबा जो जीवन जीने की कला के बारे में सिखाते हैं वो बहुत यूनिवर्सल है। परमात्मा सर्वव्यापी है या नहीं, ये सारी बातें थियोरिटिकल है, और दुनिया में और जगह पर तो ये काम में नहीं आती है। जब हम 71 में विदेश यात्रा से वापस आए, मैं तो 71 में आ गया था 4 महीने के बाद, जगदीश भाई करीब 14 मास के बाद आए, तो मैं और जगदीश भाई बैठे हुए थे, और मैंने जगदीश भाई को कहा कि हम सबका विदेश यात्रा का क्या सार है, तो इन्होंने यही बताया कि ये सारी कई ज्ञान की कई 90% बातें ऐसी है जो भारत के साथ ही कनेक्शन है। अब गीता का भगवान कौन, ये भारत के लोग ही प्रश्न उनके लिए होता है, विदेश के लोगों ने तो गीता सुनी नहीं है, गीता कौन है, क्या है, कृष्ण का नाम नहीं सुना हुआ है, इस प्रकार से ऐसे होते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है या नहीं, 84 लाख योनियां है या नहीं, मनुष्य के रूप में ही जन्म लेता है या सजा के रूप में कुत्ता बिल्ला भी बनता है, ये सारी बातें भारत की फिलोसॉफी, भारत के कर्मयोग और भारत के लोगों के कनेक्शन में बातें हैं, विदेश में ये सारी बातें नहीं है। तो इसलिए विदेश के दृष्टिकोण से और बाबा का ज्ञान सार्वत्रिक और सार्वजनिक बने, इसके लिए कुछ मेहनत करनी चाहिए। और उसके उस टाइम पर ही जगदीश भाई और हमने नक्की किया कि बाबा का जो वैल्यूज का ज्ञान जो है, मूल्यों का जो ज्ञान जो है, मूल्यों का ज्ञान को अगर हम दुनिया के सामने प्रसिद्ध करें तो उसके अंदर कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है। अभी कल की मुरली का बात लीजिए, बेफिक्र बादशाह, बेफिक्र बादशाह के बारे में कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है, कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है, सब चाहते हैं बेफिक्र होना चाहिए, हमारे सिर पर जो भी जिम्मेदारियां का बोझ है, जिम्मेदारियों का टोकरा जो है, जो भी आप समझो, वो उतर जाना चाहिए। और ये बेफिक्र बादशाह की बात ऐसी सुंदर है कि चाहे कोई भी धर्म का हो, हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम इस्लाम धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, या कोई भी और अन्य जो भी धर्म है, इन धर्म का अंदर, सभी के धर्म के अंदर ये बात तो यूनिवर्सल बातें तो जरूरी है। ऐसे ही धर्मों के सिवाय देशों के बीच में भी यही परिवर्तन हो सकता है। अमेरिकन को भी सुख चाहिए, शांति चाहिए, बेफिक्र जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, ये सब चाहिए, सबको चाहिए, सभी देश के लोग, सभी भाषा के लोग, सभी धर्म के लोग, इन सब के लिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वत्रिक सार्वजनिक ट्रूथ है, सत्यता है। और इन सत्यता को अभी ये बाबा का ज्ञान का सेकंड फेज, जो फर्स्ट फेज जो है परमात्मा सर्वव्यापी है आदि आदि जो बातें जो है हमने पहले बताया, 84 लाख योनि आदि की बात, वो फर्स्ट फेज पूरा हुआ। अब हम जब समय नजदीक आ रहा है तो बाबा का ये जीवन जीने की कलाएं जो है, 16 कला संपूर्ण बनने की बात जो है, पिछले रविवार की अव्यक्त मुरली में भी यही बात थी। तो इस प्रकार से ये जो 16 कलाएं संपूर्ण बनने की बातें हैं, हर एक कला का क्या जीवन, कला की क्या जीवन में जरूरत है, इस प्रकार की बात को लेकर के दुनिया के सामने हम जाए, तो मैं समझता हूं कि बाबा को जो प्रत्यक्ष करने का कारोबार जो है, कल बाबा ने जो कहा ना मेडिकल विंग वालों को कि इस प्रकार की सबकी दवाइयां हैं, मेरा बाबा और मेरा बाबा हो सकता है। अगर हम बाबा का ये सेकंड एस्पेक्ट जो सेकंड फेज जो है, वो सेकंड फेज को दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करें कि परमात्मा देखिए कितनी सुंदर बातें बताते हैं और कितनी गहरी बताते हैं। पिछले रविवार की आप मुरली पढ़ो, अव्यक्त मुरली, हर एक चीज की डेफिनेशन दिया हुआ है, और इतनी डेफिनेशन, दुख क्या है, झूठ क्या है, ये सब बातें पिछले रविवार की मुरली में बाबा ने कहा था। तो इस प्रकार से ये बात हम भी यहाँ पर नोट करें। और हमारे अभी चित्र जो है, चित्र अभी नई प्रदर्शनी बने, उसके अंदर जीवन जीने की कलाएं जो है, 16 कला संपूर्ण बनने की बात जो है, वो संपूर्णता क्या है, इन सब बातों के ऊपर चित्र बना करके, उसके ऊपर किताब बना करके, उसके आधार पर ज्ञानामृत हमारे प्योरिटी वर्ल्ड इसमें आर्टिकल लिख करके इस प्रकार से बातें करें। आज जो ज्ञानामृत में कईयों के आर्टिकल आते हैं, कईयों के अनुभव आते हैं, अभी भी इस टाइम पर उसमें भी आया है कि एक भाई अभी भी जेल में है और जेल के अंदर ये बात सुनी, उसके कारण क्या हो गया, उसके जीवन में जो औरों के लिए दुख था, द्वेष था, और इसके लिए उसके ऊपर जोश था उनका, उसने खून भी कर लिया था, मर्डर भी कर लिया था, ऐसे ऐसे लोगों का जीवन में जो परिवर्तन आया है, कारण यही है कि बाबा अभी जीवन जीने की कलाएं सिखा रहे हैं। तो इसके ऊपर सोचिए कि ये जीवन जीने की कला के बारे में बाबा जो बता रहे हैं, इस प्रकार की जीवन जीने की कला के आधार पर श्री बाबा को नए दृष्टिकोण से, नए तरीके से, क्योंकि ये 21वीं सदी है, 21वीं सदी में हर चीज की परिभाषाएं बदली होती रहती है। एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूं कि 20वीं सदी में ऐसा ही था कि कोई भी व्यक्ति जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता है उसको हम कहते थे इलिटरेट है, जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता था वो इलिटरेट है, और 21वीं सदी में वो परिभाषा बदली हो गई, और 21वीं सदी में कहते हैं कि जिसको कंप्यूटर नहीं आता होगा, कंप्यूटर चलाना नहीं आता होगा, वो है इलिटरेट। आप देखिए हर चीज में परिवर्तन आता रहता है, श्री बाबा भी हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं, इस प्रकार से हर चीज के अंदर, दृष्टिकोण के अंदर परिवर्तन ला करके बाबा हमको श्रेष्ठ जीवन के अनुभवी बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम भी अभी ईश्वरीय सेवा के अंदर, इस फील्ड के अंदर मेहनत करें, क्या कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा। जैसे फ्यूचर ऑफ पावर का प्रोग्राम होता है, तो फ्यूचर ऑफ पावर के अंदर भी हम कह सकते हैं कि पावर जो है वो करप्ट नहीं है, अंग्रेजी में कहते हैं कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, ये गलत बात है। पावर में पावर तो एक शक्ति है, रुपया के 100 रुपये के नोट होगी वो नोट ही है, वो नोट का इस्तेमाल कैसे करें, आपको अच्छे काम में दान पुण्य करने के काम में लगाओ, ये एक अच्छा उपयोग है। और वही काम को शराब पीने में या दारू पीने शराब पीने में या जुआ खेलने में आदि आदि तमो प्रधान बातों में भी यूज कर सकते हो। तो पैसे के अंदर वो चीज नहीं है कि ये अच्छे पैसे या बुरे पैसे, परंतु अच्छा कार्य या बुरा कार्य करने वाला मनुष्य है, और मनुष्य की बुद्धि जो है, मनुष्य की विचारधारा जो है वो तमो प्रधान हो गई है। और ये तमो प्रधान विचारधारा जो हो गई है उसके कारण क्या होता है, तमो प्रधान विचारधारा के कारण उन्होंने पावर को भी करप्ट कर दिया, पावर को भी तमो प्रधान बना दिया, और नाम बदनाम हो गया पावर का। ज्ञान तो वही है, आप जानते हैं रामायण के अंदर आप पढ़ा होगा, जो रावण जो था वो भी पराशर मुनि का पौत्र था, और सामवेद को उसका किस प्रकार से गाया जाए, किस प्रकार से बोला जाए वो रावण ने बताया था। और राम को भी जब सेतु बंध बांधना था तब और कोई नहीं मिलता था, तो रावण को बुलाया कि तुम यहाँ आकर के हमारी ये समुद्र मंथन के पहले की जो विधि जो है पूजा करने का है वो आप कराइए, कारण कि आप ब्राह्मण के बच्चे हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान वही है, राम ने सत्व प्रधान रूप में इसका उपयोग किया, और रावण ने सीता आदि को चुरा करके अपने विनाश का द्वार खोल दिया। तो ज्ञान में फर्क नहीं है, परंतु ज्ञान किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। सत्ता अच्छी चीज है, सत्ता के द्वारा राम राज्य भी हो सकता है, और सत्ता के द्वारा डिक्टेटरशिप भी हो सकती है। आज ही एक बहन आई थी, सोनिया करके बहन, जो अभी हमारा वहां पर कॉन्फ्रेंस हुई थी क्लाइमेट कंट्रोल के ऊपर, तो बता रही थी वहां पर दोहा में, वो कह रही थी कि दोहा में 3 व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति को आपस में मिलना हो तो पुलिस परमिट लेनी चाहिए। आप समझे, दोहा के अंदर इस्लाम राज्य है, दोहा के अंदर 3 व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति को आपस में मिलना हो तो पुलिस परमिट लेने की जरूरत है। अब आप बताओ उसके अंदर ज्ञान कहाँ आया, बाकी सब बातें कहाँ आई, परंतु जो राजा जो है, जो वहां का जो भी अमीर होगा या जो भी होगा, उनके जीवन में डर था कि ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो हमारी राजा ही जो है उसको निकाल देंगे। आप समझे मेरी बात को, इसलिए वो डर के मारे, सब जगह पर ऐसा ही होता है, डर के मारे। भारत का राजदूत जो है उसने चाइना में भारत का 26 जनवरी का महोत्सव मनाने के लिए सबको निमंत्रण दिया था, और उसमें माओ से तुंग आने वाले थे, तो माओ से तुंग आए, एक गाड़ी आई आगे उसको रिसीव करने के लिए जा रहे थे, तो वहां के चाइना के CID डिपार्टमेंट ने कहा नहीं इसमें साहब नहीं है, कहा ये तो दिखाई तो ऐसा ही पड़ता है, कहा उसका ये डुप्लीकेट है। 1, 2, 3, 4, 5 गई, छठी गई, 7वीं गाड़ी के अंदर माओ सुतुंग थे, मतलब इतने तक डर होता है। डर के कारण क्या होता है, और सबसे ज्यादा में ज्यादा डर जो सरमुखत्यार होता है, डिक्टेटर होता है, उसको ही होता है कि मेरी गद्दी कोई और कोई छीन न ले। तो इस प्रकार से ये डर है, भय है, ये सारी बातें जो भी है, झूठ बोलना, ये सारी बातों का बाबा सिखा रहे हैं। और पिछले रविवार की जो अव्यक्त मुरली जो है उसके ऊपर अगर कोई मेहनत करे तो बाबा ने हर एक चीज की डेफिनेशन, जैसे कानून होता है, कानून के अंदर पहला सेक्शन होता है, उसमें इस कानून के अंदर क्या क्या बातें आने वाली है उसकी डेफिनेशन क्या है वो बताते हैं। इनकम टैक्स का डायरेक्ट टैक्स कोड सरकार लाना चाहती है, उसके अंदर शुरू में 293 डेफिनेशन है, 293 प्रकार के बातों के विस्तार से समझ है कि इसको हम ये कहते हैं, इसको हम ये कहते हैं, इसको हम ये कहते हैं। तो इस प्रकार से बाबा ने एक पिछले रविवार की मुरली की अगर इसके आधार पर डिक्शनरी बनावे और इस प्रकार से लिखित में बना दे तो मालूम पड़े कि कितनी गहराई बाबा की बात है, और इनसे मालूम पड़ेगा कि बाबा का जीवन परिवर्तन कराने का जो लक्ष्य है और लक्ष्य के लिए जो मेहनत कराने की बातें करने की बात है वो कितनी गहरी है। सोचना है इसके ऊपर कि क्या अभी हमारे को ज्ञान का सेकंड फेज, फर्स्ट फेज बहुत जरूरी है। मैं ये ना नहीं कहता हूँ कि फर्स्ट फेज है, फाउंडेशन है। फाउंडेशन अगर कच्चा होगा तो ऊपर का मकान नहीं बनेगा। अभी फाउंडेशन पक्का हो गया, उसके आधार पर आगे का कारोबार करे तो क्या हो जाएगा। स्वर्ग की दुनिया बहुत सहज रूप से हम दुनिया के लोगों के अंदर उसकी उसका आकर्षण पैदा कर सकेंगे। तो इसलिए हमारे जो बुद्धिजीवी भाई बहने हैं, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हर एक सेंटर पर एक स्टडी सर्कल होना चाहिए, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। और इसके द्वारा क्या होता है कि पुरानी इतिहास की बातें जो है, हमारे कई भाई बहन है उन्होंने पुराना इतिहास जानते ही नहीं है। कैसे हुआ, स्थापना कैसे हुई, क्या हुआ, शुरू में कैसा नाम था आदि आदि पूछते रहते हैं। हम लोग जब ज्ञान में आए तो हमने क्या किया, यज्ञ का पूरा ही पुराना इतिहास जो है उसका पूरा ही डिटेल में स्टडी किया। इनसे मालूम पड़ा कि किस प्रकार से कितने कष्ट देकर के बाबा ने यज्ञ की स्थापना किया। तो इस प्रकार से आप सोचना है इसके ऊपर कि क्या ज्ञान का ये सेकंड फेज जो है, फाउंडेशन का जो हो गया वो जरूरी है, वो भी प्रदर्शनी में दिखाएंगे। जैसे अभी बॉम्बे में उन्होंने बताया था, हमारे गौरवदेव सेंटर वालों ने बताया, जीवन यात्रा रेल के डब्बों के अंदर दिखाया था। उसमें सबसे आगे इंजन का जो पार्ट था वहां पर ज्ञान का फर्स्ट फेज था, और सेकंड फेज के अंदर जीवन यात्रा, कि युवा के अंदर क्या होना चाहिए, बचपन में क्या होना चाहिए, जब एडवांस पार्टी का मतलब शरीर से वृद्ध हो जाते हैं तब क्या होना चाहिए। इस प्रकार के हर एक फेज की अपनी अपनी कीमत है, अपना अपना स्थान है। एक ही बात लीजिए, एक कन्या जो है, कन्या का कन्या के रूप का जीवन अलग होता है, और कन्या के जो बड़ी होती है, शादी होती है तो पत्नी बनती है, तो पत्नी का रूप और उसका जिम्मेदारियां अलग होती है। फिर माता बनती है और फिर आगे चल करके सास बन जाती है। तो ये कन्या, कन्या से बाद पत्नी, फिर माता, फिर सास बनना, इस अलग अलग फेज है। और उस फेज को स्वीकार करना ही पड़ेगा। फेज को स्वीकार नहीं करेंगे, अलग अलग स्टेजेस जो है, अलग अलग जीवन के अंदर के मोड है, इस मोड को स्वीकार करना चाहिए। शास्त्रों में भी लिखा है, मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है, ब्रह्मचर्याश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थाश्रम और फिर संन्यासाश्रम। वो चारों स्टेज जो है समझनी पड़ेंगी और उस फेज से हमको अच्छे में अच्छे रिश्ते गुजरना पड़ेगा। ये होना ही चाहिए, तब क्या होगा, हम जीवन को सफल बना सकते हैं और तब हमारे पास जीवन जीने की श्रेष्ठ में श्रेष्ठ कला हो सकती है। तो सोचना है इसके ऊपर, हर सेंटर के अंदर इस प्रकार का कारोबार चले और ज्ञान से का विचार सागर मंथन कर करके ज्ञान की नई नई युक्तियां जो है, जीवन जीने की कला की नई नई युक्तियां जो है, उसको दुनिया के सामने प्रसिद्ध करें तो क्या हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं तो परमात्मा का परिचय बहुत सहज रूप से हम दुनिया को दे सकेंगे। सोचना, ये मेरा सजेशन है। मैं फिर से कहता हूँ, हम जो ज्ञान का फर्स्ट फेज है उसको हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर जैसे फाउंडेशन बनता है उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनता है, इसलिए फर्स्ट फ्लोर बना तो फाउंडेशन को हमने कट नहीं किया। कट जितना मजबूत फाउंडेशन होगा इतना ही ऊपर की जो इमारत जो होगी, बिल्डिंग जो होगा इतना मजबूत होगा। तो इसलिए ज्ञान का ये फाउंडेशन बहुत ही पावरफुल है, परंतु अब सेकंड स्टेज भी होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर बाबा ने एक मुरली में कहा था कि ज्ञान का खाना खाना, खाना पकाना एक बात है, खाना पकाना एक बात है, दूसरी बात है खाना खाने की बात दूसरी है, और तीसरा खाने को हजम करना, वो तीसरी बात है। खाना खाया ही नहीं होगा और हजम करने के लिए निकलेंगे तो क्या हो जाएंगे। वो स्टेजेस जो है, और स्टेज के रूप में ही जीवन जीने की कला को भी उपयोग में लाना चाहिए। खाना पकाना चाहिए पकाने से बाद में खाना चाहिए और खाने के बाद उसको हजम करना चाहिए, डाइजेस्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार से हर जगह पर ये स्टेजेस है। तो हम अपने ज्ञान के अंदर क्यों नहीं इस प्रकार की स्टेजेस का उपयोग कर करके दुनिया के सामने ज्ञान की ये गहराई जो है, विविधता जो है, उस विविधता को और गहराई को दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करें। और इसके अंदर कल की जो बात जो है, वन ऑफ द बेस्ट, बेफिक्र बादशाह, बेफिक्र बादशाह बनने की बात कही है। सब चाहते होंगे कि हम बेफिक्र बादशाह बने। ऐसा तो नहीं है सब कहेंगे कि सारी दुनिया की फिक्र मैं करूंगा। हमारे गुजराती में कहावत है, मियां दुबले क्यों, मियां दुबले क्यों, तो सारे गांव की फिक्र, सारी दुनिया की फिक्र होती है। अभी एक जब इलेक्शन चल रहा था अमेरिका में, तो एक भाई ने मुझे आगे पूछा कि कौन जीतेगा, कि वो रोडनी जीतेगा या ओबामा जीतेगा। मैंने कहा भाई इस बात की फिक्र आपको क्यों है, अमेरिका में रहने वालों को इसकी फिक्र होनी चाहिए, आपको क्यों है। कहा नहीं नहीं रमेश भाई सर, हम दुनिया में रहते तो दुनिया की फिक्र तो करनी चाहिए ना। इस प्रकार से फालतू बातों में भी फिक्र में इतने गहराई में जाते हैं, इतने गहराई में जाते हैं कि बात मत पूछो। तो इस प्रकार से फालतू बातों का चिंतन जो है, व्यस्त चिंतन जो है, वो हम न करें। और जीवन जीने की मुख्य बातें जो है, टू दी पॉइंट, जैसे आपको मालूम होगा ना, महाभारत में जो है गुरु द्रोणाचार्य ने परीक्षा लिया, पांडवों और कौरव सबकी परीक्षा लिया, और एक वृक्ष के ऊपर एक पंखी रख दिया और उसकी आंखों में डायमंड रखा और कहा कि चलो आप देखो कौन तीर चला सकता है। पहले पहले दुर्योधन को बुलाया, दुर्योधन ने कहा मुझे तो पंखी भी दिखाई पड़ता है, सारी दुनिया भी दिखाई पड़ती है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा बैठ जा बच्चा। फिर युधिष्ठिर को बुलाया, वो भी ऐसे कहने लगा मेरे को भी सारी दुनिया दिखाई पड़ती है। फिर आखिर में अर्जुन को बुलाया, अर्जुन ने बराबर देखा और गुरु ने पूछा तो कहा कि मुझे तो सामने वाले पंखी की आंख ही दिखाई पड़ती है और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। जितनी एकाग्रता की शक्ति अर्जुन ने बढ़ाई थी और दुनिया वाले और जो भाई लोग थे उनके, इन्होंने सारी दुनिया को देखते हुए उसमें एकाग्रता की शक्ति नहीं थी। एकाग्रता की शक्ति के कारण ही अर्जुन जो है श्रेष्ठ धनुर्धारी बना। तो इस प्रकार से ये सारी शक्तियां जो है उसके बारे में बाबा ने जो ज्ञान सुनाया हुआ है वो ज्ञान का ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक और मिसाल बताऊं, बाबा ने कहा है अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखिए। ये बाबा की मुरली जो है कईयों ने मिस किया हुआ है। बाबा ने कहा है अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए। क्यों? क्योंकि आपकी वाणी औरों को वरदान भी दे सकती है, तो आपकी वाणी औरों को श्राप भी दे सकती है। आपकी वाणी में अभी वो ताकत आई है, अपनी वाणी की ताकत, अपने विचारों की ताकत, ये ताकत आपको अनुभव करना ही चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि मैं मेरी वाणी की शक्ति व्यर्थ बातों में, फालतू बातों में, औरों को परेशान करने की बातों में उसका इस्तेमाल न करूं, नहीं तो क्या हो जाएगा। हम आए हैं यहाँ अपने पिछले जन्मों के पाप कर्मों को भस्म करने में करने लिए, और हो जाएगा क्या, हम नए पाप कर्म बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी बातें होती है कि ध्यान रखिए हमारे खाते में और कोई ऐसे भी पाप कर्म जमा तो नहीं होते। बहुत ऐसी बहुत सी बातें हैं उसके ऊपर कि पाप का कर्म क्या होता है, हमारा खाता में क्या जमा होता है, क्या उधार होता है, ये सारी बातें हैं। वो हमारे हाथों में, हमारा भाग्य हमारे हाथों में है। हमारा भाग्य के आधार पर हमारा जीवन श्रेष्ठ बनावे या न बनावे वो हमारे हाथों में है। बाबा भी कहते हैं कि मैं आप बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ, परंतु पुरुषार्थ तो आप बच्चों को ही करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जीवन जीने की कला के बारे में आप सोचिए और उस दृष्टिकोण से कल की मुरली आप सुनिए बेफिक्र बादशाह, और उसके आधार पर सोचिए। उसके आधार पर आप जो यहाँ बैठे हुए हैं उसके ऊपर आर्टिकल लिखिए, विश्लेषण करके बताइए बेफिक्र बादशाह में क्या होना चाहिए। डबल ताजधारी है तो उसमें क्या होना चाहिए। बाबा ने आगे उसमें कहा है स्वराज अधिकारी बनना है, तो स्वराज अधिकारी किसको कहेंगे और उसका किसके ऊपर राज्य होना चाहिए, आदि आदि बातें जो कल बाबा ने कही, उसकी गहराई में जाइए और उस गहराई को, बाबा के इस ज्ञान की गहराई को दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करें, तो बाबा की प्रत्यक्षता बहुत सहज हो सकती है। बाकी ये कंट्रोवर्सी के अंदर जाते हैं, दुनिया वाले कहते हैं ठीक है, आप भले मानो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, हम तो अपनी बात में मानते रहते हैं, क्या करेंगे, पर ये बातें ऐसे कहेंगे, हम बेफिक्र बादशाह की बातें, साक्षी रूप क्या है, उससे साथी रूप क्या है, ये सारी ऐसी गहराई की बातें सुनाएंगे, सामने वाले एक्सेप्ट करेंगे कि ब्रह्मा कुमारी इसके ज्ञान में ये शक्ति है। उसी दृष्टिकोण से विचार करके आप देख लीजिए, कल बाबा ने क्या कहा, मुरली शुरू की, उसके अंदर के लिए क्या कहा, आज सारी सभा बेफिक्र बादशाहों की दिखाई दे रही है। पहले अव्यक्त मुरलियां चलती थी, उसके अंदर बाबा उनसे नए ढंग से बाबा ने बात कही है, ये भी बाबा से सीखने का है। पहले बता के कि बात चारों सभा को बाबा देख रहे हैं, मिलन मनाने के लिए आ रहे हैं, सृष्टि का रचयिता ये है, आदि आदि बातों के द्वारा बाबा मुरली शुरू करते थे। कल बाबा ने क्या कहा, बेफिक्र बादशाह की दिखाई दे रही है सभा, और जो मुख्य बात है, जो मैं क्यों आया हुआ हूँ, दूसरे पैराग्राफ में बताया बाबा ने कि तो बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों से मिलने आए हैं। आने का एक बात बताई और मिलने की 5-6 लाइन के बाद बताई, कार्य का विभाजन कर दिया। इस प्रकार से हमें भी बोलना चाहिए, सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। हमारे यहाँ आबू में म्यूजियम जो है ना, तो वहां पर कई बहनें पहले जाती थी समझाने के लिए, तो एक बहन ने हमको कहा कि रमेश भाई, मैंने अपने म्यूजियम की जो समझानी जो है, एक्सप्लेनेशन का जो कारोबार है, इतना रट लिया है, इतना पक्का कर लिया है कि नींद में भी मुझे कोई बोले तो मैं 101% वही बात विदाउट मिस्टेक रिपीट कर सकती हूँ। मैंने कहा बहन, आपने तो ज्ञान को मशीन बना दिया, ज्ञान मशीन नहीं है, ज्ञान जीवंत है, इट कंटेन्स लाइफ, और लाइफ को जीवंत बनाने के लिए मशीन की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति जो सामने वाला आता है उसको किस दृष्टिकोण से ज्ञान देना चाहिए, वो दृष्टिकोण से ही ज्ञान सुनाना चाहिए, एक स्टीरियोटाइप हो जाएगा तो क्या फायदा। तो इस प्रकार से बाबा भी वैरायटी दृष्टिकोण से चाहता है, और बाबा को वैरायटी दृष्टिकोण से दिया हुआ ज्ञान पसंद भी है। पिछले साल की आप मुरली आप सुन लो, देख लो, तो सभी जोन को कहा है आपने क्या नवीनता का प्लान बनाया है, कहा कि नहीं, हरेक को कहा है, हर ग्रुप को कहा है, हर विंग को कहा है, हर जोन को कहा है, आपने नवीनता का क्या प्रोग्राम बनाया। माना बाबा को नई बातें ज्यादा अच्छी लगती है, तो जो बाप को पसंद है वो करे, वो ज्यादा अच्छा है, यहाँ अपनी मनपसंद की बात करे क्या अच्छा। बाप को संतुष्ट करना हो, बाप का बाप की महिमा को दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करें, तो बाप हमारे ऊपर प्रसन्नचित हो जाएगा। हम अपनी चीज अपनी बातें करेंगे तो बाबा कहेंगे ठीक है, टिक टिक करते रहो। इस प्रकार से बाबा बोलते थे साकार बाबा भी, तो इस प्रकार से हम टिक टिक नहीं करें, परंतु बाबा को जो पसंद जो है उस तरीके से उस बात को दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करें। तो इस प्रकार से वैरायटी रूप में ज्ञान को सुनाना चाहिए, समझाना चाहिए, ये भी एक कला है। भाषण करना जो है, मुरली प्रवचन करना है, ये सारी बातें में एक कला है, और कला के रूप में इतना सुंदर से दुनिया के सामने उसको प्रत्यक्ष करो कि दुनिया भी कहेंगे कि ये ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान सर्वोत्तम है। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान सर्वोत्तम है, उसको प्रोजेक्ट करके दुनिया के सामने लाने का है, सोचना है इसके ऊपर। अब मेरी बात से आप सहमत हो या नहीं मुझे मालूम नहीं, मैं तो मेरा विचार आपके सामने रखता हूँ। फिर आगे बाबा ने क्या कहा, आप सभी भी सवेरे से लेकर रात तक बेफिक्र बादशाह हो, क्योंकि स्वराज्य मिला हुआ है, स्वराज्य मिला है इसलिए बेफिक्र बादशाह है। तो चेक करो, क्योंकि बेफिक्र बादशाह की निशानी है, उनके मस्तक से लाइट चमकता है, और बेफिक्र बादशाह हो तो डबल ताजदारी, और डबल ताजदारी जो है वही बेफिक्र बादशाह है। आप जानते हैं ना दो ताज कौन से हैं, पवित्रता का ताज और राजसत्ता का ताज, इस प्रकार से होता है। तो आप सभी अपने को बेफिक्र बादशाह का अनुभव कर रहे हो। ये बाबा ने हम सबको प्रश्न पूछा हुआ है कि आप सब अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव कर रहे हो। अब अभी जवाब देना पड़ेगा, यहाँ जवाब नहीं देंगे तो क्या होगा, धर्मराजपुरी में जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आप सोच लीजिए, अगर डबल ताज नहीं तो बेफिक्र बादशाह नहीं तो क्या हो जाएगा, बेफिक्र बादशाह नहीं तो सिर पर क्या हो जाएगा, वो भी बाबा बताते हैं, किचड़े का टोकरा तो क्या अच्छा लगता है, किचड़े का टोकरा या बेफिक्र बादशाह का डबल ताज क्या होना चाहिए, सब सोचिए इसके ऊपर। किचड़े का टोकरा तो हम लोगों ने पिछले द्वापर युग से जो भी 63 जन्म बीते हैं उसमें किचड़े का ही टोकरा जो है हमारे सिर पर उठाया हुआ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब आप दादा आज बेफिक्र बादशाह को देख खुश होते हैं। फिर जो मैंने कहा ना पिछले मुरियों में से साथी साक्षी, वो साथी की बात आई कि तो आप सभी बाप दादा के साथी अपने को अनुभव करते हो या कभी करते हो कभी नहीं, ये भी दूसरा प्रश्न है। हम बाप दादा का साथी बनना, परमात्मा का साथी बन करके इनके डिवाइन कर्तव्य जो भी है उसके अंदर मददगार बनना, परमात्मा का मददगार बनना, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और फिर हमारे ये डबल ताज जो है बेफिक्र बादशाह का जो का रोल जो है उसकी कितनी महिमा गरिमा बाबा बताते हैं कि यह डबल ताज सारे कल्प में सिर्फ आप बच्चों के पास ही प्राप्त होता है। ये डबल ताज कितना भारी है, इसकी कीमत है, मूल्य कितना है। और जिसके लिए बाबा ने आगे बताया कि राजा तो बहुत बनते हैं, द्वापर से लेकर के राजा बनते हैं, लेकिन डबल ताजदारी सिर्फ डबल ताज सिर्फ आप बच्चों को ही मिलता है। देखिए इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। पिछले 2500 वर्ष में राजा है जो भी बने, हम भी बने होंगे राजा है, उस टाइम पर हमारा वो एक ताज निकल गया होगा, राजा ही का रहेंगे, वरना पवित्रता का ताज आदि आदि नहीं होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं, फिर अभी मेन मुरली की बात बताई, तो बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को आज मिलने आए हैं। ये बाबा ने ऑपरेटिव पार्ट मैं क्यों आया हुआ हूँ वो बताने के लिए ये बताया कि मैं आपको मिलने के लिए आया हुआ हूँ। फिर बाबा ने एक दूसरा प्रश्न पूछा है। बाबा की अनेक प्रकार की विधियां हैं जिसके द्वारा ज्ञान देते हैं, कहीं प्रश्नों के द्वारा ज्ञान देते हैं, कहीं उत्तर के द्वारा ज्ञान देते हैं। कल प्रश्न के द्वारा ज्ञान दिया है कि फिक्र दे दिया है या थोड़ा बहुत रख दिया है, ये प्रश्न पूछा। इसका अर्थ ऑब्वियस है कि सारी फिक्र बाबा को दे देनी चाहिए। हमारे पास गीत भी है ना, सब सौंप दिया बाबा को, इसका गीत बहुत सुंदर गाया हुआ है। और इसका क्या फिक्र थोड़ी रख दिया होगा तो क्या होगा, फिर कभी तेरे को मेरा नहीं कर देते हो, तेरे को मेरा नहीं कर देते हो, ये बहुत गहन प्रश्न है, तेरा और मेरा। हम जानते हैं बाबा का ज्ञान जो है वो बाबा का है, यज्ञ बाबा का है, ये सारी जो भी रचना जो है वो बाबा की हुई है। हाँ बाबा की है, पर हम लोग क्या करते हैं? मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी बाउंड्री आदि आदि करके उस गहन बातों में आ जाते हैं, हद हद की बातों में आ जाते हैं। हद की बातों में आते हैं इसके कारण क्या होता है? बाबा कहते हैं कि मेरे को तेरे को मेरा तो नहीं कर देते हो, ये बहुत बड़ा भारी प्रश्न है, चाहे जिज्ञासु बहन भाइयों के लिए, चाहे टीचर्स बहन भाइयों के लिए, कि मेरा सो मेरा, तेरा सो मेरा, ऐसा तो नहीं करते हो। हस्ते में होना चाहिए तेरा तेरा, और मेरा भी तेरा होना चाहिए, इतने तक समर्पित भाव होना चाहिए। हमने 77 में हमारे पास बॉम्बे में कॉन्फ्रेंस थी, डिविनाइज द मैन, उसके अंदर पेपर लिखा था कि समर्पणता के द्वारा संपूर्णता, समर्पणता के द्वारा संपूर्णता, कि मेरा जो भी है वो भी तेरा है और उसके द्वारा संपूर्ण बनो। मेरा तेरा का आप जानते हैं ना, शिवाजी महाराज का किस्सा। शिवाजी महाराज अपने महल में बैठे थे, उनका गुरु जो था स्वामी समर्थ रामदास स्वामी, वो भिक्षा लेने के लिए निकले थे, तो उसने देखा अरे मेरा एक गुरु भिक्षा मांग रहा है, तो उसने जाकर के चिट्ठी पर कागज पर लिख के दिया, हे गुरु महाराज मेरा सारा ही राज्य आपका है। तो स्वामी समर्थ रामदास स्वामी ने बताया कि नहीं 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 मुझे क्या कर जरूरत है, तो कहा नहीं मैंने तो आपको दे दिया, तो ठीक है आप मेरा राज्य जो है मुझे जो दिया है उसको निमित्त बन करके संभालो। और इस प्रकार से इन्होंने पहले झंडा दिया भगवा झंडा, और शिवाजी को बताया निमित्त बन करके संभालो। बाबा भी यही सिखाता है हम सबकी, जो भी हमारे पास साधन है तन मन धन का जो भी साधन है हम सब ने बाबा को दे दिया है कि बाबा ये आपका है, आपका है, आपका है। बाबा का ज्ञान और जो लौकिक दुनिया के अंदर जो डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप में भी यही होता है। रशिया में जाओ, चाइना में जाओ, वहां सब जगह पर यही था कि जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी सब सरकार की है। यहां पर भी बाबा की प्रॉपर्टी, हम कहते हैं बाबा ये सब आपका है। दुनिया के अंदर जो डिक्टेटरशिप जो होती है उसमें खाली प्रॉपर्टी को ही सरकार नेशनलाइज करती है, ले लेती है, परंतु हरेक को अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना व्यवहार वो चलाने के लिए छुट्टी देती है। बाबा तो वो भी नहीं कहता है, बाबा कितना स्ट्रिक्ट है इस बात में, मन मना भो, आपका मन भी मेरे में लगाओ, मैं कहूं इस प्रकार से आपका मन आपका बुद्धि का कारोबार चलना चाहिए। आप सोच लीजिए कि हम बाबा के इस प्रकार से समर्पित भाव के आधार पर अपना मन, अपना तन, सब जो भी है, धन जो भी है, वो सब हम बाबा को समर्पित करके उस समर्पित भाव के आधार पर कारोबार करते हैं। और अगर इस समर्पित भाव के आधार पर कारोबार करेंगे तो हम संपूर्ण सहज रूप में बन सकते हैं। इसलिए हमारा वो पेपर था संपूर्ण समर्पणता के द्वारा संपूर्णता, बाबा के सारी कई मुरलियों का सार उसमें हमने लिखा था। तो इस प्रकार से ये बाबा यहाँ कहते हैं तेरा और मेरा, मेरे को तेरा में कर दे संपूर्ण समर्पण हो जाएंगे। पर तो क्या करते हैं हम, तेरा को मेरा, मेरा मेरा रहे और तेरा भी मेरा बन जाए। इसलिए बाबा कहते बेफिक्र बनने की बहुत सहज विधि है, मेरे को तेरे में बदल लो। कितना सहज है मेरे को तेरे में समर्पित करना, ते और मैं का फर्क है, इतना ही फर्क है। तो सभी ने दे दिया है, मेरे को तेरे में बदल दिया है। जो समझते हैं हम ऐसे बेफिक्र बादशाह है, जिन्होंने मेरा सब तेरे को दे दिया हुआ हो, ऐसे जो बेफिक्र बादशाह हो वो हाथ खड़ा करे। और बाबा ने कहा लंबा हाथ खड़ा करो। कल तो खैर एक बाकी जगह पर तो लंबा हाथ खड़ा करने के लिए कहा, फिर आगे में दोनों हाथ खड़ा करने के लिए कहा, उसका भी अपना अर्थ है, दोनों हाथ का क्या अर्थ है, सिंगल हाथ का क्या अर्थ है, वो आगे हम देखेंगे। और फिर बाबा कहते हैं अगर थोड़ा भी मेरा जो है मेरे में रह गया हो, उसके लिए कहते हैं बाबा अभी भी थोड़ा बहुत रह गया हो तो फिक्र दो और फकुर ले लो। बाबा ने क्या कहा, अभी भी थोड़ा भी जो कोई मेरापन जो है वो उसको बाबा को समर्पित कर दो। क्यों? उसका कारण भी बाबा लॉजिकल समझाते हैं कि विश्व में दिन प्रतिदिन भय तो बढ़ने वाला ही है। ये तो हम सब देखते हैं, दुनिया में रहते हैं, जानते हैं भय बढ़ने वाला है। और आप सभी बच्चे, बाप के बच्चे बेफिक्र बादशाह बन औरों को भी फिक्र से दूर कर सकते हैं। ये एक ईश्वरीय सेवा का एक नया डायमेंशन कल बाबा ने सिखाया, क्योंकि औरों की फिक्र जो है उसको दूर करने के लिए और बाबा का ज्ञान सुनाएंगे तो क्या होगा, वो भी बेफिक्र बादशाह बन सकता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ बाबा ने बताया। हाँ, कैसे भय के समय पर, ऐसी ऐसी समस्याओं के समय पर उनको निर्भय करिए, ये भी एक ईश्वरीय सेवा का साधन है। ईश्वरीय सेवा के साधन इतने अनेक प्रकार के सेवाओं का साधन है, परंतु क्या कर सकते हैं, नवीनता को जीवन में धारण कर करके नवीन बातों के आधार पर ईश्वरीय सेवा करना आता नहीं, इसलिए क्या होता है, कोई जो ट्रेडिशनल सेवाएं जो है उसके ही अंदर कॉम्पिटिशन होती है, फिर मेरी सेवा मेरा ये मेरा ये मेरा हो, ये मेरा मेरा हो जाता है। कारण यही है कि हमने ईश्वरीय सेवा को मर्यादित स्वरूप दे दिया है। अगर जिस प्रकार से बाबा सिखाते हैं कि फिक्र सारी दुनिया की दूर करो, वो कितना विशाल विशाल क्षेत्र है, तो सोचते ही। और ये बेफिक्र बादशाह बनने के लिए सहज साधन क्या है, बहुत सुंदर बाबा ने बात बताई है। इसके लिए सहज साधन है अमृत वेले से लेकर रात तक फॉलो ब्रह्मा बाप, क्योंकि ब्रह्मा बाप भी साकार तन में हर जिम्मेदारी होते भी बेफिक्र बादशाह रहा। बाबा ने फिर आगे भी कहा है, चाहे कई बच्चों ने ब्रह्मा बाप को साकार में देखा नहीं, लेकिन उनके चरित्र, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ, जैसे आप साकार में हो वैसे ही उतनी बड़ी जिम्मेदारी होते भी सफल बादशाह रहे थे। ये बाबा ने हिंट दिया क्या होना चाहिए, कि बाप के प्रैक्टिकल लाइफ और जो भी है साकार में चरित्र, उनके प्रैक्टिकल लाइफ आदि का हमको इतिहास मालूम होना चाहिए। हमारे जगदीश भाई ने आदिदेव किताब लिखी हुई है, आदिदेव किताब सबको पढ़नी चाहिए। मैं जरा एक सवाल पूछ लूं, यहाँ जो बैठे हुए हैं उनमें से आदिदेव किताब जगदीश ब्रह्मा बाबा की लाइफ के बारे में जो बताया हुआ है उसके अंदर, वो किसने किसने पढ़ी हुई है? आदिदेव जिसने पढ़ी हुई है हाथ खड़ा करे। बहुत कम है, 10% भी नहीं है। पढ़ना चाहिए, जिसके कारण मालूम पड़ेगा बाबा के जीवन की दिव्यता, महानता, श्रेष्ठता और समर्पणता, कैसे बाबा ने अपना जीवन समर्पित करके श्रेष्ठ बनाया, वो प्रेरणा मिलेगी। तो ऐसे जीवन चरित्र पढ़ने चाहिए। हमारी दादी जानकी ज्ञान की किताब जो भी छपती है किताब है वो सब हम पढ़ती है, ज्ञानामृत भी छपता है वो पढ़ते हैं। इस प्रकार से हमें भी पढ़ने का थोड़ा शौक डेवलप करना चाहिए। हर एक लोग किताबें नहीं ले सकते हैं, तो इसके लिए मैं हमेशा ही रेकमेंड करता हूँ हर एक सेंटर को, हर सेंटर पर एक छोटा सा कपबोर्ड होता है, उसके अंदर ज्ञान की सब किताबें रखनी चाहिए। और कौन लेके गया, कौन किसने पढ़ा, उसका रजिस्टर होना चाहिए। तो बाबा के जीवन चरित्र है, बाबा के कर्तव्य जो है वो सारी बातें मालूम पड़े। हम चाहते हैं कि हमारे सभी बाबा के बच्चे सेंटर पर लाइब्रेरी रखें, और लाइब्रेरी रख करके बाबा के हर एक साहित्य जो भी है, लिटरेचर जो भी है, उनका अभ्यास करें। बाबा ने इसलिए कहा इसके बारे बफॉलो ब्रह्मा बाप, आप लोगों ने तो ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा है, हमने तो देखा है, अनुभव भी किया है। ब्रह्मा बाबा के पास फिक्र की कई बातें आई। पहली बात आपको बताऊं, पहली बात यज्ञ में 51 में गरीबी का पेपर आया, गरीबी का पेपर आया। कराची से यहाँ आए और जिस व्यक्ति ने ऑफर किया था कि मैं आपका कराची से यहाँ आने का सारा खर्चा दे दूंगा, वो दिया नहीं, इसलिए गरीबी का पेपर आया। सुबह के दिन नाश्ते के समय पर बाबा नाश्ता करने के लिए गए तो एकदम पतली पतली सी दाल थी और रोटी थी। तो बाबा ने पूछा, बच्चों ने नाश्ता किया? तो भाई बूढ़ी दादी आदि जो भी दादियां जो थी किचन में, इन्होंने कुछ बोला नहीं, इसलिए बाबा समझ गए हाँ कि बच्चों ने नहीं खाया है। तो बाबा उठ गए, बाबा ने कहा कि बच्चों ने नहीं खाया है तो बाप कैसे खा सकता है, बच्चों ने नहीं खाया है तो बाप कैसे खा सकता है। उठ गए, करीब सुबह 9:30 बजे हुए थे और बाबा ने दादा विश्व किशोर और विश्व रतन दादा को बुलाया। विश्व रतन भाई को कहा कि जाओ तुम पोस्ट ऑफिस जाओ, आज की पोस्ट देखो, आज की पोस्ट में क्या क्या आता है देखो, उसमें से कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाएगा। और दादा विश्व रतन, उस जमाने में पोस्ट 10 बजे मिलती थी, पोस्ट ऑफिस में जाते थे तो 10 बजे में तुरंत हाथ से हाथ मिल जाती थी, नहीं तो वो पोस्टमैन देने के लिए आएगा तो 10 के बदले में 12-1 भी बच जाता था। इसलिए बाबा रोज पोस्ट प्रातः काल में वहां से मंगाते थे। तो वो पोस्ट आई, उसमें से खोला तो एक लिफाफा निकला और उसमें 200 रुपया थे। बाबा ने विश्व किशोर दादा और विश्व रतन दादा को जाओ बाजार में और ये 200 रुपये का सामान लेकर के आओ, और लेकर के आए और दोपहर का खाना सबको पेट भर करके मिला। वास्तव में गरीबी का पेपर 6 घंटा ही चला, 6 घंटा भी नहीं, सुबह 9 बजे के नाश्ते के समय पर बाबा नाश्ता करने से उठ गए और दोपहर में 1:30 बजे तो सबको भोजन मिल गया। अब दोपहर में सुबह 9 से 1:30 बजे तक 5-5.5 घंटा ही गरीबी का पेपर चला हुआ है। और तो हमारे कई बहन भाइयों ने इस बात को, गरीबी के बात को इतनी दोहराई है, इतनी दोहराई है कि जैसे कि सारे यज्ञ के ऊपर वज्रघात हो गया होगा, ऐसी बातें फैलाई हुई है। पर तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा ने कहा बच्चे गरीबी का पेपर 5-6 घंटा ही चला, दूसरे दिन फिर लिफाफा में 1000 रुपये आ गया और इस प्रकार से आता रहा और यज्ञ फिर से फुल स्पीड में आगे बढ़ता रहा। तो देखिए अपने सिर पर कितनी बड़ी भारी जिम्मेदारी थी, सारे यज्ञ के सभी ब्रह्मावत्स को भोजन खिलाने की जिम्मेदारी होते हुए भी बाबा फंक नहीं हुए और धीरज से काम लिया। उसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल है, हापुर करके एक शहर है यूपी में, वहां पर हमारी संस्था के विरुद्ध में कई अन्य संस्था वालों ने काफी हंगामा किया था, घर से बाहर निकलने नहीं देते थे, खाना पीना भी मिलता नहीं था, दूध भी आता नहीं था, सफाई करने वाले भी सफाई करने के लिए नहीं आते थे, ऐसे स्थान पर थे और उसका काफी घमसान का समाचार जो है मातेश्वरी, मैं यहाँ ही बॉम्बे आबू में था 52 में, जब मातेश्वरी जी हापुर दिल्ली पंजाब आदि चक्कर लगा करके आए थे तो मातेश्वरी जी ने बताया कि ये चीज ऐसे ऐसे हापुर में हुआ है। हमारे बलदेव भाई थे जिन्होंने अभी तो शरीर छोड़ दिया है, उनके गले में सांप डाला था, क्या क्या किया था एंटी पार्टी ने। तो बाबा को समाचार सुनाया तो रात की क्लास में भी समाचार मातेश्वरी जी ने सबको सुनाया तो मुझे भी चिंता हुई। तो मैं मुरली बाबा का रात्रि का क्लास पूरा हुआ फिर मैं बाबा के पास गया, मैंने बाबा को कहा कि बाबा ये हापुर का तो समाचार जो है वो चिंताजनक है, चिंता जैसे होती है। बाबा आपको भी चिंता हुई या नहीं? पवन का नहीं, बाप को चिंता नहीं होती है, बाबा तो ड्रामा करके समझ जाते हैं। मैंने कहा आप युक्ति हमको सिखाओ ना, आप जो युक्ति से चलते हो हमको सिखाओ। तो बाबा ने कहा कि मेरी एक ही युक्ति है, 5000 वर्ष पहले जैसे ये यज्ञ की स्थापना हुई थी उस प्रकार से हो रही है। 5000 वर्ष पहले ये यज्ञ की स्थापना जिस प्रकार से हुई थी इस प्रकार से हो रही है, और इसलिए बाबा उसको साक्षी बन करके देख रहे हैं। बाबा इस प्रकार की परीक्षाओं से भयभीत यहाँ ऊपर नीचे अवस्था को नहीं करता है। ये बाबा का सिद्धांत हम सब समझ ले कि 5000 वर्ष पहले जैसे समस्याएं आई उस समस्या को बाबा ने परीक्षा कहा है, परीक्षाएं आई उस प्रकार से हम भी स्वीकार कर ले तो क्या हो जाएगा, हमारे पास भी ये फिक्र की बात नहीं होगी। 5000 वर्ष पहले जैसे भी हुआ ऐसा आप कर लो। ये बहुत गहर युक्ति है, मैंने अभी भी ज्ञानामृत में लिखा हुआ है कि बाबा ने मैंने जब बाबा ने ट्रस्ट बनाने का नक्की किया वर्ल्ड इंडियन स्पिरिचुअल ट्रस्ट, और मुझे उनका मैनेजिंग ट्रस्टी बनने को कहा, तो मैंने कहा बाबा मुझे तो अनुभव नहीं है कि ट्रस्ट कैसे चलाया जाए, मैं तो इनकम टैक्स का वकील हूँ और वो वकील का कारोबार कर सकता हूँ, बाकी ट्रस्ट चलाने का कारोबार का अनुभव नहीं है, और कोई कई समस्या आएंगी तो मेरे से गलतियां भी हो सकती है। बाबा ने कहा कोई बात से फिक्र नहीं करो, कोई भी समस्या आए तो 2 मिनट बाबा की याद में बैठ जाना और याद करना 5000 वर्ष पहले भी, 5000 वर्ष की बात नहीं है, समझो कल की बात है, कल की बात है, कल हमने कैसे इसको फेस किया, कैसे इसको सामना किया, इस प्रकार से मन में चिंतन करो, बाबा को याद करो, तो 5000 वर्ष पहले कैसे उस समस्या का समाधान हुआ उसका टचिंग आपको मिल जाएगा और आप समस्या को जीत सकेंगे। ये विधि जो है, ये युक्ति जो है चलानी चाहिए, जीवन में लानी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर ही सारी जिम्मेदारी ले लेते हैं। बाबा ने हमको क्या बताया कि 5000 वर्ष पहले जैसे ये समस्या आई और उसका समाधान हुआ, इस प्रकार से उस समाधान को योग की शक्ति के द्वारा अपने में धारण करने की शक्ति खींचो। बाबा से शक्ति लेने का, 5000 वर्ष पहले की बात की शक्ति लेने का, इस प्रकार से शक्तियों का अपने अंदर दिव्य अवतरण करना सीखिए, और अवश्य ही इस प्रकार की समस्या के आधार पर आपको बाबा की मदद मिल सकती है। मैं तो ये प्रयोग करता हूँ, हमारे को कहीं प्रॉपर्टीज के बारे में निर्णय करना होता है, आप जानते हैं हाईकोर्ट के अंदर जो भी कोर्ट में केसेस पड़े हुए हैं उसमें से 60% केसेस कोर्टों के अंदर संपत्ति के, प्रॉपर्टीज के होते हैं, परंतु यज्ञ के अंदर हम लोगों ने 2000 से भी अधिक प्रॉपर्टीज ली हुई है। परंतु बाबा की इस युक्ति कि 5000 वर्ष पहले भी जैसे हुआ था इस प्रकार से अभी हो रहा है उसके आधार पर उसका कारोबार करते हैं तो बाबा की मदद मिलती है, और उसके कारण क्या होता है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है और समस्या आगे नहीं बढ़ती है, वहां ही समस्या का समाधान हो सकता है। अगर मैं भी अपने जीवन के अंदर इस ईश्वरीय कारोबार के अंदर इतना कारोबार कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, आप सबके पास ईश्वरीय सेवा की जिम्मेदारी है, हम सब यज्ञ रक्षक है, हम सब है क्या नहीं यज्ञ रक्षक, जो समझता है मैं यज्ञ रक्षक नहीं हूँ वो हाथ खड़ा करें, तो हम सब यज्ञ रक्षक है। तो ये युक्ति अपना लो, कोई भी समस्या आए और उसके लिए योग में बैठ जाओ, बाबा हे बाबा 5000 वर्ष पहले हमने कैसे किया था उस प्रकार से हमको मार्गदर्शन दो, शक्ति दो और गाइडेंस दो, बाबा देने के लिए तैयार है, बंधा हुआ है। बाबा ने कहा ना टोकरा बाप को दे दो, तो क्या करते हैं, हम कहते हैं हम बाबा को क्यों टोकरा दे, हम अपने सिर पर ही रखते रहते हैं, इसके कारण ही सारी जो भी समस्या है उसका कारण यही है कि हमारी समस्या हम अपने सिर पर ही रखते हैं, बाबा को देते नहीं है। अगर बाबा को दे दे तो क्या हो जाएगा, हमारा जीवन सफल हो सकता है। मेहनत करना चाहिए और जो ज्ञान की युक्तियां है ना, उस युक्ति को सीख करके उसके आधार पर जीवन चलाने की कला सीख लो। ये भी एक कला है जीवन जीने की कला के अंदर, कि ऐसे बाबा ने जो युक्तियां सिखाई है इन युक्तियों को जीवन में धारण करके कैसे आगे बढ़े, सोचना इसके ऊपर। मेरा कोई फोर्स नहीं है आपके ऊपर। और बाबा ने इसलिए बताया कि ब्रह्मा बाप के बारे में, अंत तक उन्हों की सूरत में बेफिक्र के ही चिन्ह दिखाई दे, अंत दिन तक भी कोई भी आधार बिना लास्ट क्रॉस कराया। आप सबको मालूम है ना हिस्ट्री हॉल के, हम बाबा बाहर निकल रहे थे, ब्रह्मा बाबा ने कहा निराकारी निर्विकारी निर्विघ्न भव, वो कहकर के अंदर गए कमरे में और थोड़े टाइम में बाबा ने बाबा अव्यक्त हो गए। तो बाबा ने क्या बताया, बहुत सुंदर कल शब्द यूज किए हैं, ऐसे हेल्दी और फकूर में वेल्दी, ऐसे हेल्दी और फकूर में वेल्दी। तो आप सभी बच्चे भी बेफिक्र बादशाह बने हो, चाहे शरीर का हिसाब किताब और है लेकिन स्थिति सदा बेफिक्र बादशाह की रहे। हम जो है ना अपने हम शरीर की व्याधि के कारण व्याधि स्वरूप बन जाते हैं। मेरा खुद का पहला अनुभव है, मैंने पहली बार ब्रह्मा बाबा को वहां पर बॉम्बे में हरकिशन दास हॉस्पिटल है, बाबा को किडनी की कोई ट्रबल हुई थी थोड़ी, तो वहां हॉस्पिटल में दाखिल किया था। तो मेरी लौकिक माता ने मुझे कहा कि ब्रह्मा बाबा को हॉस्पिटल में दाखिल किया है, आप आएंगा? मैंने कहा जरूर मैं आऊंगा। मैं गया बाबा के पास, तो मैंने बाबा को पूछा बाबा आपका ऑपरेशन हुआ है? देखिए मेरा अप्रोच और बाबा का अप्रोच। बाबा ने मैंने कहा बाबा आपका ऑपरेशन हुआ है? कहा नहीं बच्चा मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है। मैंने कहा नहीं आपका ऑपरेशन हुआ है? बाबा कहे नहीं बच्चा मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है। तो मैंने मेरी माताजी के सामने देखा लौकिक माताजी को, कहा ब्रह्मा बाबा तो ना कहते कि मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। तो शांता माता मरियम लौकिक माता ने कहा कि बाबा आपका तो ऑपरेशन हुआ था ना, आप कैसे कहते हो मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ? और फिर बाबा ने ज्ञान दिया, ज्ञान का फर्स्ट लेसन मुझे ब्रह्मा बाबा के द्वारा मिला कि बच्चे मेरा नहीं हुआ, मेरे शरीर का ऑपरेशन हुआ। ये पहला लेसन, मैं और मेरा शरीर हम दोनों अलग, ये मेरा शरीर है मैं शरीर नहीं हूं, ये पहला लेसन। और उसके ऊपर बाबा ने करीब 40 मिनट हमको ज्ञान दिया। ये पहला लेसन जो है ना, आप सब भी पहला लेसन पक्का कर लो कि मैं मेरे शरीर से न्यारी आत्मा हूं, तो क्या हो जाएगा, जैसे ब्रह्मा बाबा की स्थिति श्रेष्ठ बनी ऐसी हम सब की बन सकती है, ये 100% बाबा की गारंटी है। परंतु क्या करें, हम योग के और ज्ञान के प्रयोग ही नहीं करते, अनुभूति करने की मेहनत ही नहीं करते। इसके कारण क्या होता है, इस ज्ञान को हम उपयोग में नहीं लेते। हमारे जेब में पैसे हो और हम भूखे बैठे रहे तो फायदा क्या, पैसे है उसमें अनाज खरीद कर लो, चीजें खरीद कर लो, खाना बनाओ खाओ। हम खाना नहीं खाते, बनाते नहीं है, हम यूज नहीं करते, अपने पास रख देते हैं। इसलिए ये बात आप करो, ट्राई करो, ज्ञान के इतने सुंदर सुंदर अनुभव बाबा करा सकते हैं, इतनी सुंदर सुंदर युक्तियां बाबा ने सिखाई है, इन युक्तियों का भंडार बाबा है। और इस युक्तियों के बारे में, ज्ञान की कौन सी युक्ति बाबा ने सिखाई है उसके ऊपर आर्टिकल लिखिए, किताब लिखिए, बनाइए। हमारे जगदीश भाई लिखते थे जीवन हीरे तुल्य कैसे बने, इस प्रकार से उन्होंने हीरे तुल्य की बात कही। हम लोग कह सकते जीवन जीने की श्रेष्ठ में श्रेष्ठ कलाएं क्या हो सकती है, और मेहनत कीजिए, परंतु क्या करें सबको फुर्सत नहीं है। फिर आगे बाबा कहते हैं कि आप आज बाप दादा सभी बच्चों को ऐसे ब्रह्मा बाप समान देखने चाहते हैं, चाहे चेक करना चाहे शरीर कैसा भी हो, लेकिन मन सदा बेफिक्र बादशाह हो। तो नोट करना, ये बाबा ने नोट करने को कहा है, नोट करना, सुबह को उठते ही चेक करो सब कॉन्शियस में भी कोई फिक्र तो नहीं है, और फिर बीच बीच में चेक करते रहो, तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि सारा कल्प में सिवाय आप बच्चों के और कोई डबल ताजधारी बच्चे बन नहीं सकते। आपके चित्रों में, जड़ चित्रों में भी डबल ताज है, द्वापर में कई राजाएं बने, बाबा ने फिर से वो बात रिपीट करी। फिर बाबा नए बच्चों के लिए भी ले लिया, बहुत फास्ट बाबा ने मुरली चलाई। कल मैंने बताया ना आपको, 7:33 को बाबा आए और 9:20 को चले गए, वहां 2 घंटे से भी कम समय पर हम बच्चों के साथ में रहे थे। फिर बाबा ने कहा आज भी बहुत बच्चे आए हैं, सभी बच्चों को विशेष बाप दादा मिलने आए हैं, अभी वो लेना तो नहीं देंगे ना, इस प्रकार से बाबा की बात है, बाबा ने बताया है। फिर बाबा ने कहा सभी आए हुए बच्चों ने मिलन मनाया, बाप भी खुश है और बच्चे भी खुश है, लेकिन यह अपना वरदान कभी भी भूलना नहीं, कैसे भी हो शरीर का हिसाब शरीर जाने, लेकिन मन सदा बेफिक्र, कैसा भी पेपर हो लेकिन पेपर और अनुभव बना करके आपको आगे बढ़ाने वाला है, इसलिए डरना नहीं। होशियार बच्चे बाबा कहते हैं कि पेपर से कभी डरते नहीं। ये डर के बारे में हमारे आर्टिकल लिखे, किताब लिखे, डर भय, मृत्यु का भय, कितने प्रकार का भय है, उसकी लंबी लिस्ट निकाल करके कहे, और बाबा इन सभी भयों के ऊपर विजय प्राप्त कराते हैं। सेवा बहुत है, बहुत है, वो सब करते नहीं है, और फिर क्या होता है, सेवा के नाम पर ही झगड़े होते हैं, विवाद होता है, इसलिए क्या क्या करें। हमारे पास बहुत से भाइयों की परीक्षाएं आती है, पेपर आता है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, कारण यही है हम लिमिटेड जो फील्ड बनाया हुआ है वही सेवा करना चाहते हैं, नई सेवा करने की तमन्ना इच्छा हमारे में नहीं है, वो मर गई है। ऐसा कह करके बाबा ने मुरली पूरी की, 8:24 को मुरली पूरी की, माना 7:42 से 8:24 तक बाबा ने अव्यक्त मुरली का रिलेवेंट पोर्शन चला, उसके बाद गुजरात जोन का टर्न की बातें ने बताई, वहां पर भी बाबा ने उनको भी बताया, बाबा चाहते हैं कि बाबा का हर बच्चा सदा बाप ब्रह्मा बाप समान मास्टर ब्रह्मा बने, ये बाप की चाहना है सबके लिए, गुजरात जोन के लिए नहीं है सिर्फ, सबके लिए है, कि बाबा की चाहना है कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप समान मास्टर ब्रह्मा बने। और बाबा कहते हैं बच्चे सारे कल्प में अभी संगम पर ही मिलते हैं, सतयुग में भी साथी होंगे, परंतु अभी पहचान से मिलते हैं, वहां की पहचान चेंज हो जाएंगी। मैंने कहा ना साथीपन, परमात्मा का साथीपन, अर्जुन ने परमात्मा के महिमा गाई है, तमेव माताश्च पिता तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्व तमेव सर्वम मम देव देव, इसमें जो सखा जो है, सखा भाव जो है, वो बाबा कहते हैं सत्युग में भी साथी होंगे परमात्मा के, होंगे ना, कहाँ जाएंगे, परंतु यहाँ की जो पहचान जो है अभी जो है ब्रह्मा बाप और हम आत्मा है, अलौकिक पिता है, ये सारी पहचान परिवर्तित हो जाएंगे। और फिर बाबा दूसरी गाइडेंस देते हैं कि निमित्त तो गुजरात है, लेकिन बाबा सामने फॉरेन वाले भी है और छोटे छोटे गांव वाले बच्चे भी हैं, एक एक बच्चे को बाबा देखो भी दूसरी डायरेक्शन देते हैं, परंतु हमारी कमजोरी यही है कि हम बाबा की डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं। बाबा क्या कहते हैं, देखो एक एक बच्चे को बाप दादा दोनों बाप क्या करना चाहते, क्या कराना चाहता है, सदा बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो और अपना राज्य नजदीक लाते चलो। समझा, ये इतने तीन शब्दों में ही बाबा ने क्या बता दिया, हाँ सदा बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो और अपना राज्य नजदीक लाते रहो। फिर मेडिकल विंग की और सर्विस सेवा की विंग की बात कही, मेडिकल विंग की मैंने पहले ही बताया, बाबा ने कहा हाँ कि मेरा बाबा वो दवाई सबको दे दो, और उसी प्रकार से सिक्योरिटी वालों को भी कहा हाँ क्या करना चाहिए। फिर बाबा ने हम बच्चों को फिर एक सवाल पूछा, कल बाबा ने बहुत सवाल पूछे परंतु मैं हमेशा ही बाबा को कहता हूँ, मेरी एक फरियाद है बाबा के साथ, बाबा आपने दो कान दिए हैं ना, इस कान से जो ज्ञान जाता है ना वो इससे निकल जाता है, अंदर जाता ही नहीं, इसके कारण सारी समस्या है। बाकी बाबा ने कहा है आप एवर रेडी तो हो ना, एवर रेडी हो, कोई भी समय आए कैसा भी समय आवे, लेकिन ब्रह्मा कुमार और कुमारी हर एक हर समय पर सदा खुश रहे, यह है एवर रेडी की निशानी। ये मैंने कहा ना, ये एक वैल्यू है, एवर रेडी पना ये एक वैल्यू है, उसके ऊपर आर्टिकल लिखा जाए, उसका विस्तार में जाए। हाँ तो बाबा जो कहते हैं कैसा भी समय आवे लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी हर एक समय सदा खुश रहे। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी की खुशी गायब न हो, ऐसा हो सकता है? बाबा ने हाथ खड़ा करवाया। बाबा फिर कहते हैं समय तो आता रहेगा, परीक्षाएं तो आती रहेंगी, बाबा रिजल्ट देखेंगे। सभी ने हाथ उठाया है कि समय पर हम बेफिक्र बादशाह बनेंगे। छोटी छोटी बातें भी और बड़ी बातें भी आनी है, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी को कोई बात बड़ी नहीं है। दादी जानकी का एक क्लास है, बहुत सुंदर क्लास दादी जानकी ने कराए है, बहुत सुंदर कराते हैं दादी जानकी जी क्लास। हमारे हाथ में बड़ी बात को छोटी करना और छोटी बात को बड़ी करना, ये हमारे हाथ में है। हम क्या करते हैं, इसमें एक्सपर्ट है, छोटी बात को बड़ी कर करके, इतनी बड़ी करके, इतनी बड़ी करके, जैसे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर इसके द्वारा ही होने वाली हो, इतनी बड़ी करके कि दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करते हैं। बाबा कहते कि नहीं, दादा दादी कहते बड़ी बात को भी छोटी करना हमारे हाथ में, ठीक है ऐसा तो होता है करके छोड़ दो, परंतु हम छोड़ते नहीं है, हम बड़ी बात छोटी बात को भी बहुत बड़ी करते हैं और उसमें सब एक्सपर्ट है। फिर डबल विदेशियों की बात कही और फिर बाबा ने सारी बातें कही, याद प्यार दिया, इस प्रकार से हुआ। वो 8:46 को पूरा हुआ, फिर स्टेज पर कारोबार चला, मोहिनी बहन के बारे में याद प्यार दिया है, वो सारी बातें जो है, और गीता के भगवान के बारे में ब्रिजमोहन भाई ने पूछा, मैंने भी बाबा से पूछा कि बाबा कारोबार के अर्थ कहीं संदेश हम आपको भेजना चाहे तो संदेश की तन की तबीयत ठीक नहीं होते होने के कारण हम भेज सकते हैं? बाबा ने कहा जरूर भेज सकते हैं, संदेश ही सदा ही एवर रेडी है। इस प्रकार से कहकर के बाबा ने विदाई दिया 9:20 को। इस प्रकार से बाबा ने कल डॉक्टर ने छुट्टी दिया था दादी गुलजार को 2 महीने की 2 घंटे की तक बैठने के लिए, बाबा ने थोड़ा 9:20 तक बैठ करके कारोबार चलाया। सोचना इसके ऊपर बाबा की, क्योंकि 7:25 को क्लास में बाबा आए, दादी गुलजार आई थी 7:25 और 9:20, आप गिनती करो तो 2 घंटे से अंदर बाबा ने अपना काम पूरा किया। तो ये जिसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, ये हम सबको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ एंकर के रूप में बहनें आती है स्टूडियो में, वो खुद ही प्रश्न पूछती रहती है, बोलती रहती है, भाषण करती है। एंकर के जिम्मेदारी होती है 1:10 का रेशियो, 1% वो बोले और 10% और जो आया है मेहमान उसका जिसका इंटरव्यू ले रही है उसको बोलना चाहिए। इसके बदले में 10-1 कर देते, खुद 10% बोलती है, 10 गुना बोलती है और सामने वाला को एक बार ही बोलने का चांस देती है। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, सोचना इसके ऊपर। अब मुझे भी टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, क्योंकि 12:30 बजे समाप्त करना है, तो इसलिए हम अभी समाप्त भी करते हैं। ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद करके हम समाप्त करेंगे।
ओम शांति। जिस दिन बाबा के बने आत्मा का पहला पाठ जरूर मिला, मुरली में भी बाबा यही बात करता है, लेकिन आदरणीय भ्राता जी ने बहुत अच्छे अपने अनुभव के आधार से बात को शेयरिंग किया कि कैसे बाबा को मैंने कहा आपका ऑपरेशन, बाबा ने कहा मेरा नहीं परंतु मेरे शरीर का ऑपरेशन हुआ, तो मैं और मेरा कैसे। भाई साहब ने बहुत अच्छे ढंग से अनुभव के आधार से स्पष्ट किया कि बाबा ने उसी दिन मुझे पहला पाठ पक्का कराया, और कल भी बाबा ने जो मुरली में कहा वो भाई साहब ने स्मृति दिलाई कि कैसे मेरे को तेरे में परिवर्तन करना है, तो मेरा कुछ नहीं सब कुछ तेरा है, ये पाठ पक्का कराया। साथ ही साथ आप सबको बताया, पक्का कराया कि यज्ञ के आप सभी, मैं तो हूँ ही, लेकिन आप सभी भी यज्ञ के पक्के रक्षक हो, हमें इस यज्ञ की रक्षा करनी है। तो इस प्रकार से भाई साहब ने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल, मम्मा का भी एग्जाम्पल दिया, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से स्पष्ट किया। मुझे एक बात याद आती है, हमने नहीं देखा मम्मा बाबा का साकार प्यार, भाई जी आपके द्वारा हमने पाया बाबा साकार का साक्षात्कार। रोम रोम में जो यज्ञ चलाते ये भ्राता रमेश भाई जी, न्याय व्यवस्था अंके क्षण में श्रीमत के शहदाई आप है आदरणीय भ्राता जी। तो भाई साहब ने बहुत अच्छे ढंग से मुरली को एक्सप्लेन किया, बेफिकर बादशाह स्थिति कैसे रखनी है वो अनुभव कराया। जोरदार ताली बजा करके भ्राता जी का हम आभार व्यक्त करेंगे, बहुत बहुत तहे दिल से आभार है। इसके बाद भी आप सभी यहीं बैठेंगे, डॉक्टर प्रेम बसंत भाई जी का क्लास रहेगा।